نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبشر الفريق
ساسي
ہمارے پیارے آقا دیدان نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے سب، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سے بچے عیسائیوں کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہندوؤں کے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، کافروں کے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، اور گناہگار فاسق فاجر جو والدین ہوتے ہیں ان کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں۔ وہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اکثر ہم فرما رہے ہیں ہر بچہ فطرت یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، عیسائی گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو عیسائی بنا دیں گے، یہودی گھر میں پیدا ہوگا تو یہودی بنا دیں گے۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کو چینج کر کے کس رنگ میں اس کو ڈالتے ہیں۔ تو جبکہ فطرت جو ہے وہ اسلامک لے کر پیدا ہوا ہے وہ، تو یہاں پر ایک راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے وہ کس رنگ میں ڈالتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک قرآن پاک کی آیت ہے جو بہت ہی جلالی ہے اور سخت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بالکل براہ راست دو اور دو چار کی طرح ایک بات فرمائی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے قلوب اتنے زنگ آلود، اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے اس پہ غلاف چڑھ چکے ہیں، اتنی گندگی اور سیاہی کالا زنگ دلوں پر آ چکا ہے کہ آج ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، قرآن کی آیتوں سے ہم نہیں ڈرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں جو کوئی باتیں ہیں ان سے ہم لوگ نہیں ڈرتے، زلزلے آتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے، کرونا آتا ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے مردوں کو ہم نے اتنے جان پہچان والوں کو رشتہ داروں کی میتیں ہم نے قبر کے اندر اتاریں لیکن ہم نہیں ڈرے کہ بھائی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کو دفن کرنے ہیں، ارے بھائی ان کو نہیں ہے، آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے۔ تو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابھی شام کے برما کے جو حالات چلے وہ ہمارے سامنے، کشمیر میں 75-80 سال سے مسلمان کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، فلسطین کے حالات اس وقت ہمارے سامنے، اور ان ساری باتوں کی وجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ تھی جب انسان ہم مسلمان جب تقوی کو چھوڑ دیں گے، یعنی جب گناہوں میں ہم لوگ پوری طرح سے نپٹ جائیں گے اور گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے گناہ کبیرہ کا، تو پھر ہماری اوپر اللہ کی طرف سے ذلت کی مورے لگنا شروع ہو جائیں گی، یعنی ذلت پھر ہمارا مقدر بنے گی جب تقوی کو ختم کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہمارے گھر کا جو ہمارے آج کل جو معاشرے کا جو ماحول جو سب چل رہا ہے، تو اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ہم لوگ ڈر نہیں رہے۔ ابھی سب INS کے انڈر میں پورا پاکستان ہمارا چل رہا ہے، مزید ٹیکسز لگ رہے ہیں، ہر 15 دن کے بعد بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے۔ ایک دم سے بھی اللہ پاک عذاب دے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے اللہ پاک پیار سے، کیونکہ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا رب، تو اللہ پاک تھوڑی تھوڑی کر کے ہماری چوڑیاں ٹائٹ کر رہے ہیں، تو شاید یہ سدھر جائیں، لیکن ہم لوگ سدھر نہیں رہے۔ نماز تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن جب گناہوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے تو اس پہ ہم لوگ بالکل خاموش، تقویٰ نہیں ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ سے پھر اللہ کی مدد نہیں آ رہی جس حساب سے آنی چاہیے۔ تو دونوں کام چل رہے ہیں، رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش، تو کہاں سے کام بنے گا؟ تو آج جو دل میں جو دباؤ پڑ رہا ہے ان سوچ کے تو نہیں بیان کرتے، الحمد للہ حضرت تعالیٰ بس یہی طریقہ تھا، اللہ جو حضرت فرماتے تھے جو دل میں اللہ ٹش بھیج دیں وہی مثل فش اسے پیش کر دیا بہت۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ نے گھر کے والد کو کہا ہے، باپ کو، او انفسیکم اہلیکم نارا، اس کے اوپر ایک الگ سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تو باپ کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک، کیا فرما رہے ہیں؟ بیوی کو نہیں، ماں کو نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ ماں تو مکلف ہے، نکم ہے، اصل جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ باپ ہے۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں پہلے اپنی جان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، انفسکو، پھر اس کے بعد اہلیکم و نارا، پھر اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال میں کون آتا ہے؟ بیوی اور بچے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے اگر میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، دیندار بننا پڑے گا، جیسا میں خود ہوں گا میرے بیوی بچے آٹومیٹک ویسے بن جائیں گے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اس طرح سے ہوئی۔
अब जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कोई क्रिकेटर होता है, उससे पूछे भाई अपने बेटे को आप क्या पढ़ाएंगे, तो क्या कहेगा, जी मैं क्रिकेटर बनाऊंगा, फिल्म स्टार होगा, पॉप सिंगर होगा। पूछेंगे अपने बेटे को आप क्या बनाएंगे, कह रहे पॉप सिंगर, क्रिकेटर, फिल्म स्टार। तो जैसा बाप होगा वही तालीम देगा। कोई डॉक्टर होगा तो पूछेंगे तो भाई अपने बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्चा आसान कर दिया, बाप को कहा जा रहा है तुम अल्लाह वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, जहन्नम से बच जाओ, तुम्हारे घर वाले भी कामयाब हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आज लोग ये रोते हैं कि यार मेरे बीवी बच्चे मेरे सुनते ही नहीं है, मैं तो उनको इतना दीन की तालीम देता हूँ, तबलीग करता हूँ। भाई आप अभी नाकिस हैं, प्रॉपर नहीं है अभी आप, सही है ना। तो हजरत फरमाते थे, हजरत वाला का अजीब जुमला, एक नाकिस किसी को कामिल नहीं बना सकता, एक नाकिस कभी किसी को कामिल नहीं बना सकता। तो फरमाए पहले खुद तकबे पर आओ, खुद अपनी इस्लाह कराओ, जब तुम्हें तुम्हारे अंदर अनवरात का जखीरा हो जाएगा फिर तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ इरादे करोगे, सोचोगे, अल्लाह तुम हस्बे मंशा तुम्हारे हिसाब से मामला कर देगा। तो आज लोग जो होते हैं वो अपना तकबा छोड़ के, बाद लोगों को फिक्र होती है तो बीवी बच्चों के पीछे लग जाते हैं, अरे भाई तुम तो फजर की नमाज पढ़ते नहीं, बदनगरी तुम कर रहे हो, मोबाइल लेकर तुम बैठे रहते हो, तुम्हारी तबलीग में जान नहीं होगी, जान होती है मुत्तफी होगी तबलीग में, उनके अल्फाजों में नूर पैदा करते हैं, जो वो कह रहे होते हैं उसमें हमारा अमल भी होता है। अभी तो हम खुद ही सही हैं तो हमारी जुबान में वो असर तासीर नहीं आएगी जिससे लोग मुतासर हो और वो ऐसी कैफियत उनकी पैदा हो जाए कि वो उठने का दिल ना चाहे उनके पास। उसके लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं, तकवा अख्तियार करना पड़ता है, किसी की जूतियाँ उठानी पड़ती है, सोबत में रहा जाता है मुराद ये। फिर उसके बाद अल्लाह मुकामता फरमाते हैं कि फिर इंसान बोलता है तो फिर सामने वाले के दिल हिल जाते हैं और फिर असर करती है फिर बातें। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बीवी बच्चों का नहीं बोलना छोड़ दे, नहीं, वो भी वाजिब फर्ज है, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से समझाता रहे लेकिन सख्ती ना करे। कहीं किसी मामले में तरद्दुद हो तो अपने शेख से मशवरा कर ले, ये मामला तो होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमा रहे हैं घर के बाप से कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से, उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है, यानी वो जो भड़क रही है जहन्नम की आग, उसका जो ईंधन है फोर्स जिससे वो भड़क रही है, जैसे गाड़ी चलती है ना पेट्रोल से, हर चीज़ की एक फोर्स होती है, तो जो भड़क रही है जहन्नम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उसका ईंधन जो फोर्स है, उसका जो पेट्रोल है वो पत्थर और इंसान है। और आगे अल्लाह ने फरमाया उस पर इतने शदीद, इतने जालिम, इतने कड़े, यानी स्पेशल फोर्स है फरिश्तों की, जो तुम पर आज़ाब के लिए हम मुकर्रर करेंगे। फिर जब वो तुमको आज़ाब देंगे तो उनको तुम्हारे ऊपर ज़रा रहम नहीं आएगा। रहम आने का मतलब ये उनको तरस से बिल्कुल वो ला ताल्लुक, उनको रहम तरस नहीं आता फरिश्तों को। और क्यों तरफ नहीं आता, रहम नहीं आएगा, क्योंकि वही नहीं कहेंगे दुनिया में बहुत बड़े VIP थे इनकी पिटाई वगैरह कम लगाओ, नहीं वो ही नहीं कहेंगे, उन्हें वो एक ही चीज़ देखेंगे। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि उनको तुम्हारे ऊपर रहम नहीं आएगा, तरफ नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हुक्म को देख रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मैंने तुम्हें इनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करूँगा अज़ाब के लिए, तो मेरे हुक्म को देखेंगे, तुम पर तरफ नहीं कहेंगे। तो कितने वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये घर के बाप को कहा है, ठीक है भाई। अब आज घर के जो वालिद का जो किरदार होता है, ये पूरे माशरे का बता रहा हूँ, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के, पूरे दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, बहुत कम आटे में नमक के बराबर होंगे वालदैन या बाप जो बच्चों को सही तरीके से लेकर चलते हैं। वरना तो आवा गई आवा ही सब बिगड़ा हुआ है, बच्चा माँ के पेट से निकलता है उसको 5 लाख का आईफोन पकड़ा देते हैं, ये हालत इस वक्त चल रही है। छोटे छोटे बच्चे नंगी फिल्में देखना है, वो बालिग भी अभी नहीं हुए, बालिग भी नहीं हुआ। मैं अपने एक दोस्त का ढाबा पर आप चश्मदीद वाक़ बता रहा हूँ, उसकी एक बच्ची है इनाबाद, मेरे ख्याल 4 या 5 साल की बच्ची होगी, वो एक मोबाइल लेकर आई मेरे पास। उसने कहा अंकल ये क्या है, उसमें गंदे मनाजिर, इतने गंदे मनाजिर। मैंने कहा बेटा, मैंने इसको शर्मिंदा किया इसके बाप को, मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, अपने अब्बू से पूछो, अब्बू की बहुत रिसर्च है इसके ऊपर। उसने कहा क्या है क्या है, मैंने कहा बच्ची को बताओ, और ज़रूर बताना, बच्चों को अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए हर चीज़ की। जब उसने देखा तो एकदम से गुस्से में बड़ा उठा और बीवी को डांटने लगे, वो साहब ये तुम क्या इसके मोबाइल में पकड़ा देती हो, और देखो क्या देख रही है। मैंने कहा ड्रामेबाजी मत करो, पैसे मैंने उसको दे दिया मोबाइल, और वो देख रही है बच्ची, इसी तरह वो जवान हो जाएगी देखते देखते, फिर क्या होगा, तबाही बर्बादी मुकद्दर बनेगी। तो ये तो एक छोटी सी एक मिसाल दी है। तो जो बाप की जिम्मेदारी थी बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना, अच्छी तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं दे रहे, उनको सिर्फ दुनिया परस्ती सिखाई जा रही है, उनको खुदा परस्ती नहीं सिखाई जा रही, उन्हें सिर्फ दुनिया परस्ती सिखाई जा रही है, खुदा शनासी उनको नहीं सिखाई जा रही। आजकल जो स्कूलिंग सिस्टम हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, इस पर उलमा कराम ने फरमाया है कि अगर फतवा दिया है, अगर अब जो स्कूलिंग सिस्टम में जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे जो मैट्रिक करके, उनमें 60% इर्तदाद होगा, कुफुर होगा, कुफुर कुफुर, आज स्कूलों में नए स्कूलिंग सिस्टम में ये सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ की लॉजिक होती है, लॉजिक, बगैर लॉजिक के किसी बात पर अमल मत करो, पहले देखो समझो और उसकी लॉजिक मांगो, अगर समझ में आए तो करो वरना नहीं। ये मगरिब से ये चीज़ आई है जिसने ईमान को ख़त्म कर दिया। मुसलमान लॉजिक का मोहताज नहीं है, मुसलमान गुलाम होता है। मुसलमान का मतलब ये होता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को खम कर देना, इट्स कॉल्ड मुस्लिम। लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान की तारीफ पढ़े तो उसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी गर्दन को तस्लीम कर देना, खमे तस्लीम कर देना, सर को झुका देना, उस पर ईमान लाना और अमल करना। लॉजिक मांगने वाला सिर्फ मुसलमान कहाँ से हो गया? ये तो फरंगियों ने सिखाया जा रहा है। आज जो है लोग कहते हैं दाढ़ी की क्या लॉजिक है, दफनों से ऊपर पैंचे क्या रखूँ क्या लॉजिक है, तो ईमान चला जाएगा भाई। तो ये आजकल वालदेन ऐसे स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं बच्चों का, ऐसी तालीमी सिस्टम को करवा दिए कि जिससे वो दूर से, एक तो घर से दीन नहीं मिला, ऊपर से जो स्कूल में दाखिल कराया, जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, वहाँ पर भी कोई दीनी चीज़ें नहीं है, ख़त्म कर देंगे, सिलेबस चेंज हो चुका। वो तो आप लोगों को पता है जो हमने 15-20 साल पहले पढ़ी थी, इस्लामियात वगैरह और दूसरे जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो आएंगे। अब तो पॉप सिंगिंग के शोबे और हिंदू बादशाह अशोक और गौतम बुद्ध के चैप्टर डाल दिए। अब तो हमारे बच्चे ये पढ़ेंगे, उनको हीरो बना के पेश किए जा रहे हैं, जो पुराने निशाने हैदर और 65-71 की जंग में जो कारनामे थे, जो निशाने हैदर जिनको मिला था, जिन्होंने 65 की जंग में जाने दी थी, जिन फौजियों ने, वो कोई चैप्टर इस तरह का कुछ नहीं है जिससे ईमानी हरकत पैदा हो। तो ये वबाल किस पे जा रहा है? ये वालदैन के ऊपर जा रहा है कि क्या वो माहौल दे रहे हैं, जैसे खुद थे वैसी औलादों को भी बना दिया, तो कैसे मसाइल हल होंगे? ये औलादों के साथ मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ये वजह क्या भाई, कोई बच्चा हो हमारा, चूल्हा जल रहा और अचानक वो जाए और वो हाथ रखे तो दौड़ के भाग के जाता है और उसको बचाता है कि बच्चे का हाथ मार जाए। वो अच्छी से अच्छी गिजा का, अच्छे से अच्छे कपड़ों का, हर तरह से उनको चाहते हैं अमन सरन को, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो तालीम हम दे रहे हैं भाई, ये बेचारे तो बड़े मासूम अच्छे बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, लेकिन माँ बाप ने इनको बेचारों को ख़राब कर दिया। हुआ क्या कि इनको बर्बादी का रास्ता दिखा दिया, मोहब्बत में एहसास भी नहीं। तो ये मोहब्बत का ये थोड़ी है, मोहब्बत का क्या है कि उनकी दुनिया भी शानदार हो और मरने के बाद जब औलादे अल्लाह के पास जाए तो वो फौरन जन्नत में चली जाएँ, मज़े मज़े उनके हों, ये असल मोहब्बत। इसके ऊपर किसी बुज़ुर्ग का बहुत प्यारा मकूला है, उन्होंने फरमाया कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है और फिक्र होती है, हर इंसान को इस बात की फिक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। लोग अक्सर ये कहते हैं ना यार पाकिस्तान का इतना माहौल ख़राब है, सोच रहा हूँ मैं मूव कर जाऊँ कहीं और चला जाऊँ, यहाँ तो रहने के काबिल जगह नहीं है, यहाँ तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है बच्चों का। यही अक्सर लोग कहते हैं ना, फिक्र है कि मेरे बाद मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। तो फरमाते हर इंसान को फिक्र है मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरी औलादों का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरी औलादों का उनको ये मरने के बाद क्या होगा। भाई अल्लाह सबकी औलादों को लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन एक वक्त आएगा औलादें बूढ़ी होंगी, लंबी उम्र पाएंगी इंशाल्लाह, फिर वो भी तो अल्लाह के पास कभी ना कभी जाएंगी मर के। तो ये फिक्र क्यों नहीं है कि जब वो जाएंगी अल्लाह के पास तो उस वक्त क्या तकवा और क्या अमाल लेके जाएंगी, क्या फ़ायदे उनके होंगे, वो फिक्र है ही नहीं। तो भाई ये मोहब्बत तो जुज़वी वक्ती दुनियावी मोहब्बत है, जो आपने अच्छा खिला दिया, पिला दिया, ऐश करा दिया, आपने दोनों जहाँ में उनको चैन और सुकून से रहने के नुस्खे, वो कामयाबी के नुस्खे क्यों उनको सिखाया, वो माहौल क्यों नहीं दिया उनको, है ना। और उसके बाद एक और हमारे स्टाइल चला हुआ भाई, पहले पानी के अंदर उतार दिया, बाद में कह रहे हैं गीले मत होना, और डांट रहे हैं यार ये कह के तुमने गीले कैसे हो गए, तुम हमारा गीले तुम ना गीले मत होना। तो कोई होशा बेटा हुआ है, अब्बा आपने खुद ही तो मुझे पानी में उतारा है, आप क्या मोतिया लग रहे हैं आप तो मुझे, क्या कह रहे हो जीसे आप उतार रहे हैं पानी में, कह रहे हैं गीले मत होना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही बात कि भाई जब पानी में उतरे हैं तो गीले तो होंगे। आज लोग एतमाद के साथ अपनी बेटियों को, अपने बेटे को एक को एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन दिला देते हैं, जिससे हमारे पाकिस्तान का हाल, कराची का हाल, हमारे सामने हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर जिना के अड्डे बन चुके हैं, जिना के अड्डे। और उनको तलखीन है, ख़बरदार बेटी को दाखिला दिलवा दिया, तलखीन हो रही है, ख़बरदार लड़कों से दूर रहना, लड़कों के साथ साथ में बैठे हैं और तलखीन हो रही है उनको कि भाई दूर रहना। वही बात कि पानी में उतार दिया, नाराज़ हो रहे कि गीले मत होना, कैसे हो सकता है। वला तखरबू जिना, अल्लाह फरमा रहे हैं जिना से अगर बचना है तो तुम्हें असबाब गुना से दूर रहना पड़ेगा। वला तखरबू जिना, के दूर जिना करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिन बातों से जिना होने का अंदेशा हो, डर हो, फिक्र हो, तो उन अवामिल, उन ज़राओं से भी अपने आप को दूर रखो, तो जिना से आदमी बचेगा। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जिना मत करो, ये कहा जिना के असबाब से भी दूर रहो, जिनसे ऐसे असबाब ऐसे ज़राए जिनसे गुनाह होने का डर हो, उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे माशरे में, जैसे आजकल मोबाइल हो गया ख़ास तौर पे, फिर उसके बाद मखलूत माहौल, लड़के लड़कियाँ मिक्स गैदरिंग, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मिक्स गैदरिंग हो या ख़ानदान में शादी भी है जो आजकल जो मिक्स गैदरिंग के साथ होती है, जहाँ भी मखलूत माहौल हो, जहाँ आज़ादाना माहौल हो और बेपर्दा वगैरह का कोई सिस्टम फिर ना हो, तो फिर उसके ज़िना होने का अंदेशा बढ़ जाता है, क्योंकि वला तक़रबू पर अमल नहीं हुआ। हज़रत वाला फरमाते थे जो वला तक़रबू पर अमल नहीं करेगा वो तफ़ालू हो जाएगा, यानी उससे वो फ़ाल हो जाएगा। तो भागना है गुनाहों की जगह से, करार नहीं है फरार है। हम चाहते हैं गुनाहों की जगह पर हम करार से रहें और गुनाहों से बचे रहें, ऐसा नामुमकिनात में से, मौत तक कभी ऐसा नहीं हो सकता। खौफुन तासीर रखता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब ज़ुलैखा ने अपने दाम में फांसने की कोशिश की थी, कुरान पाक में अल्फाज है जो ज़ुलैखा बार बार वो उनको अपनी तरफ बुला रही थी, हई तलक कि अब आ भी जाओ, क्या उसकी अदाएँ थी। और कमरा, फिर कमरा, दर्द का कमरा, सातवां कमरा था उसका ज़ुलैखा का, यानी इतनी सिक्योरिटी थी और हर कमरे में ताले, और इस तरह जो सातवां उसका खास कमरा था, यानी बादशाह की बीवी थी और बे इंतहा हसीन थी, उसको अपनी इज्जत और बदनामी का भी डर था। उसने फिर ये हरकत करी, वो आशिक हो गई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने जमाल देख के, तो फिर जब उसने अदाएँ पेश करी अपनी बुरे काम के लिए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या अमल था, नबी थे, उन्होंने सलातुल हाजात नहीं पढ़ी, उन्होंने सजदे में नहीं गिरे, वो रोए नहीं कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्बे नहीं लगाई, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जो दरवाज़ा बंद था जो ताला जहाँ लगा हुआ था उस तरफ भागे हूँ। अब अकल में आने वाली बात क्या, आदमी क्या कहेगा, इतना बड़ा ताला पड़ा हुआ यहाँ भाग रहे हैं, कहाँ से खुलेगा ताला। और फिर उसके बाद खुल भी गया बिलफर्ज, अगर वो तो भाई दूसरे कमरे में जाएंगे वहाँ ताला, इस तरह सात कमरों के ताले हैं। वो कह रही है तुम जा नहीं सकते, ये पूरा वाक़या पुराने पाक में ये सूरह यूसुफ में आ चुका। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में यही उनका मकसद था, अल्लाह जो मेरे अख्तियार में मैं वो करूँगा, बाकी आपके अख्तियार में सब कुछ है, आप वो करेंगे, तो बस मेरे अख्तियार में फ़िरू इलल्लाह, भागना अल्लाह की तरफ। तो मैं वो फिर भागे बंद ताले की तरफ, तो अल्लाह की फिर मदद आई और फिर ताला खुल गया, और फिर वो कमरा खोल के भागे, फिर दूसरा ताला खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, इस तरह सातों ताले खुलते चले गए। फिर अल्लाह की मदद बाद में आई, पहले वला तक़रबू पर उन्होंने अमल किया, उस बाबे को उन्होंने दूरी इख्तियार करी, अल्लाह की मदद फिर बाद में आएगी। हम लोग मोबाइल चिपटा के रखते हैं, लड़कियों को साथ हर वक्त बैठे रहते हैं लड़कियों के, उसके बाद परेशान होते हैं, मेरा नफ़ और शैतान मेरा जान नहीं छोड़ रहा मेरी, कैसे होगा भाई, ये तो पागलों वाली बातें, ये ख्याल जनू अस्तु महाल अस्तु, ये तो दीवानों वाली बातें। अगर अल्लाह वाले किसे कहते हैं, मुत्तकी लोग किसे कहते हैं, तो जो असबाब गुनाह से अपने आप को दूर रखते हैं, उनके पास हर वक्त मोबाइल सेट नहीं होता, वो लड़कियों नामहरम औरतों के साथ बैठे नहीं रहते, वो दूर रहते हैं, वो भी डरते हैं अपने नफ्स से कि ऐसा ना हमारे ऊपर भी शैतान आ सकता है। सिर्फ नबियों की ज़ात होती है जो मासूम होती है, जिनसे गुनाह नहीं हो सकता, बड़े से बड़ा कुतुब अब्दाला अगर गौस भी हो उससे भी गुनाह का गुनाह कबीरा का फुतूर हो सकता है, इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं असबाब गुनाह से दूर रखते हैं, अपने आप को आजमाइश में नहीं डालते। तो जो असबाब गुनाह के करीब जाएगा या असबाब गुनाह को अपने से करीब करेगा, उसका काम खराब होगा, बेड़ा गरक होगा, नफ्स और शैतान उसको उठा के पटकेंगे, ये एक पक्की बात है। आज के लोग कहते हैं कि भाई असबाब गुनाह के करीब रहते हुए फिर आप अपनी क़ुव्वत इरादी से और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करें मामला, तो ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, क्या अल्फाज हैं अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमने तुम्हें बहुत कमज़ोर पैदा किया, तो हम तुम्हारे मालिक और खालिक हैं, जब हम तुम्हें कह रहे हैं तुम खिंच जाओगे, हराम कारी में पड़ जाओगे, बदमाशी में पड़ जाओगे, अपने आप को मुत्तकी नेक अल्लाह वाला मत समझो, क़ुव्वत इरादी को ऊपर भरोसा मत करो, नफ्स और शैतान तुम्हारा जो है वो पूरा कूड़ा कर देंगे, कचरा कर देंगे, तुम जीत नहीं पाओगे, सिर्फ तुम एक ही सूरत में बचोगे, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता, सिर्फ एक ही सूरत में बचोगे, वला तक़रबू, असबाब गुनाह के करीब मत जाओ तो बचे रहोगे, असबाब गुनाह के करीब जाके फिर यह एहतमाल करना है कि मैं बचता रहूँगा तो नामुमकिन है। हज़रत फरमाते थे मिसाल देखे, देखो भाई मैग्नेट है, उसके करीब कोई अठन्नी रखोगे लोहे की मिसाल के तौर पर, तो वो नाचती रहेगी, वो उछलती रहेगी, बेचारी तड़पती रहेगी वो अठन्नी ना, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड उसके दायरे में रहेगी वो अठन्नी, तो आप उसकी रेंज से उसको आउट कर दें अठन्नी को, तो फिर उसका तड़पना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अहाते से दूर चलेंगी। तो बस फरमाया कि जो सन से नाजुक जो होती है, ये जो लड़की होती है, औरत जो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड रखती है, तो उसका एक अहाता उसका है, जब तक आप उसके अहाते के करीब रहोगे तो आपके दिल में एक आग लगी रहेगी, बेचैनी बेचैन शहवत की आग लगी रहेगी, गंदे सहरात आते रहेंगे, हर वक्त चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। और हजरत तो यहाँ पर फरमाया, अगर तुम उसको देखोगे भी नहीं, लेकिन अगर तुम उसके करीब बैठे हो तो भी उसकी गर्मी की आग तुम्हें जिस्म की लगती रहेंगी। अगर समय 10 फीट तुम्हारे, अगर 5 फीट दूर अगर कोई ऑफिस में कोई लड़की बैठी है और तुम उसकी तरफ पीठ फेर के बैठो, तुम देख भी नहीं रहो, तो फरमाया तजर्बा करके देख लो, तुम्हारे कल्ब में उसकी करीब बैठने की जो कुर्बत की जो गर्मी है वो तुम्हारा कल्ब महसूस करेगा, और गंदे सहरात भी आएंगे, शहवत भी बढ़ गएगी, सब कुछ होगा। ना भी अगर देखो तो फरमाया हसीनों से 3 तरह की दूरी ज़रूरी है, आयनन कल्बन खालिबन, आयनन नज़र से, नज़र बचानी, कल्बन दिल में उनके बारे में सोचना भी नहीं, नंबर 3 खालिबन जिस्म से भी उनसे दूर रहना है, अगर फ़र्ज किया दिल भी बचा लिया, नज़र भी बचा ली, लेकिन जिस्म करीब रखा हुआ है तो भी आदमी नहीं बचेगा, तो भी वो चीज़ उसके ऊपर अटैक करेगी। तो इसलिए ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखें अगर गुनाहों से बचना है। और आजकल लड़कियों से बड़ा औरतों से भी ज़्यादा जो सख्त फितना चल रहा है भाई, ये मोबाइल सेट का चल रहा है, ये एंड्रॉयड सेट टच मोबाइल, इससे एहतियात रखें और सादा मोबाइल इस्तेमाल करें, और घर में इसको अगर वक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें, बावजूद वो ज़रूरत पड़ती है इसकी हम मानते हैं, तो उसको वक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करें। जैसे भाई मेरे पास है, मैंने ये सादा मोबाइल रखा है ना, मैं अपने नफ्स पे भरोसा नहीं करता जी, मैं शेप हूँ बयान कर रहा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई मैं भी डरता हूँ, इसलिए मैं खुद डरते हुए जो डर गया वो बच गया। अल्फाज याद रखिएगा, जो अपने आप को अल्लाह वाला नहीं समझेगा, फासिक फाजिर गुनाहगार समझेगा, जलील घटिया समझेगा, अपने नफ्स को कमज़ोर समझेगा और डर के और बचते हुए चलेगा, तो इंशाल्लाह बच जाएगा। और जिसने कहीं ये समझ लिया मुत्तकी हूँ अल्लाह वालों हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, मैं बहुत 30 मार खान हूँ, कुछ नहीं होता, आदमी को अपने ऊपर बहुत सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, तो उसको शैतान बहुत उड़ा के पटकते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी के अंदर तकब्बुर होता है जो ऐसी बात कह रहा है, तो फिर अल्लाह की जो मदद होती है उसको बचाने के लिए, फिर वो अड़ जाती है, फायर अहमद पर लड़ जाता है। तो फायर अहमद कब तक साथ चलता है, जब तक आदमी गुनाह से बचना चाहता है और जब तक वला तफरबू पर अमल वो करता रहता है, तो फायर अहमद के अंदर वो रहेगा, बचा रहेगा वो। हाँ वक्ते ज़रूरत अगर कोई आदमी को ज़रूरत हो तो भाई वो अलग रखे, हर वक्त लोगों से बातचीत करनी, कुछ करनी, लोग वो अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को दे मजबूरी में, सादा मोबाइल का नंबर दो, उससे बातचीत करें आदमी, कोई ज़रूरत है कोई पर्ची कोई चीज़ स्नैपशॉट लेने है, कुछ सेंड करनी है कोई चीज़ हो, उसके लिए फिर इस्तेमाल करें, दोबारा वहीं रख दे, क्योंकि मशायख फरमा रहे हैं एक एक घंटे के बड़े बड़े जीद उलमा का इस वक्त बयान कर रहे हैं कि हम लोगों का समझ पता नहीं है, खाली एक गुनाह से मोबाइल पर अगर बात की जाए तो ज़िंदगी तबाह कर दी है इस मोबाइल ने, बड़े बड़े जो शरी पर्दे करने वाली जो औरतें थी बेचारी अल्लाह वाली, सिर्फ वही बात नफ्स पे भरोसा किया, बेदीन गुनाहगार मर्द और खवातीन और अफराद की बात नहीं हो रही, उनके तो मामलात ही अलग हैं, मैं दीनदार मुत्तकी लोगों का हाल आपको बता रहा हूँ, जो अंदर की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने शौरों से तलाक ही नहीं, अपने रोते बिलखते बच्चों को छोड़ा और फिर यंग लड़कों से उन्होंने फिर शादियाँ करी, कितने लड़ मर्द जो थे अपनी बीवियों को तलाक ही दी और छोटी छोटी कम उम्र लड़कियों से उन्होंने शादियां करी या उन्होंने जिना किए, ये एक रिपोर्टिंग नहीं है, हज़ारों लाखों घर तबाह कर दिए इसने, क्योंकि शहवत की आग लगा दी इस मोबाइल ने, एक 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक बूढ़ा सब खामोश है, आज किसी की नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है, मियाँ बीवी आपस में बातचीत नहीं करते, बहन भाई आपस में बातचीत नहीं करते, सब खामोश है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, यानी बगैर बोले का एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई हम सब आज़ाद हैं, बोल कोई नहीं रहा, हम सब आज़ाद हैं, तुम अपनी डगर पे चलो मैं अपनी डगर पे चलूँगा, सब आज़ाद है भाई, ये कौन सा मज़ा लग गया फिर, क्या कोई दरस कुरान देख रहा है, क्या कोई बयान सुन रहा है, सुबह से लेकर रात तक 6-6 घंटे तक मोबाइल पर लोग बैठे रहते हैं, लेकिन आज रोने का मुकाम ये कि आज अक्सर ये शिकायत आती है किसी अल्लाह वाले का बयान होता है कुछ होता है तो लोग कोई नए लोग होते हैं दुनिया पर, तो देखो ओ 1 घंटा 2 मिनट इतना लंबा बयान, अबे यार कौन सुनेगा इतना लंबा बयान, 1 घंटे का बयान बस उनके दिमाग का फ्यूज उड़ गया, नफरत आ गई अल्लाह के जिक्र से, इतना बड़ा इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अल्लाह के ज़िम्मे, टाइम नहीं है, जिसने रोटी दी, जिसने पानी दिया, जिसने खाना खिलाया, जो माँ के पेट से अब तक हमें ऐश करा रहा है, खूब मज़े करा रहा है, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, जब जिस वक्त जो हमने चाह उस रब ने हमें दिया, आज उस रब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है तो नफसानी ख्वाहिशात के लिए, दुनिया की गुनाहों के कामकाज के लिए, वो वाली बात पूरे करने के लिए, चाहे जायज़ नाजायज़ जो भी हो, सब चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन नहीं है वक्त तो अल्लाह के साथ ऑनलाइन होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, और अल्लाह ना करे भी मौत वाकई हो जाए तो यही प्यारे जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा था, यही प्यारे जिनके लिए अल्लाह के लिए टाइम नहीं था, यही प्यारे कहेंगे गर्मियाँ बहुत हैं, साहब बहादुर अब्बा जी कहीं बदबू ना छोड़ दें, बर्फ की सिल्ले लगाओ, कपड़ा बांधो चेहरे के ऊपर, पंखा लगाओ और जल्दी से उसको उठाओ, बदबू ना छोड़ दें। औलादे कहती हैं बदबू छोड़ देंगे अब्बा, जल्दी उठाओ उनको। ये वो अब्बा है जो अपने इन्हीं प्यारों के लिए अल्लाह को छोड़ बैठे थे, आज वही औलादे सब घर वाले क्या कह रहे हैं, जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी मट्टी बुर्द करो उनको, फिर उठा के जनाजा फिर फेंक कर आते हैं कबर के अंदर, 4x6 के बड़े नहीं, फिर उसके बाद 4 सलों के सलेबे रखने के बाद समा के फिर बिरयानी खाते हैं, बिरयानी फिर कहते हैं भाई डिश की बोटियाँ ख़त्म हो गई, बोटियाँ तो और लेकर आओ, तो लोग भमोड़ भमोड़ के मज़े से बिरयानी खाते हैं इसाले सवाब की। अब तो इसाले सवाब की भी लोग खाने ऐसे खाते जैसे पत्नी शादी का खाना है, ऐसे खुशी के साथ, वरना मुझे याद है 20-25 साल पहले लोगों से खाना नहीं खाया जाता था मौत का, तो कड़वा खाना कहलाता था, 2-3 निवाले लेके हलफ़ से उतार के रख दिया करते थे, लेकिन आज ऐसे दबा के खाते हैं। ये मशाइख फरमाते हैं ये कुलूब के सख्त और जंग आलूद होने की अलामत होती है, जब आदमी मौत का खाना भी दबा के ऐसे खाए जैसे कोई शादी ब्याह वलीमे का खाना। और इतनी आजकल वैरायटीज रखते हैं मैयतों में, खीर अलग, कढ़ाई अलग, कोल्ड ड्रिंक अलग, जैसे कोई बेचारा मैयत गले पड़ी हुई थी खुशी में, भाई खुशी में आ रही हो क्या कर रहे हो, खुश हो गए क्या, तो भाई खूब खाना खाओ जान छुटी, समझ भाई। तो भाई ये दुनिया बड़ी जालिम जगह है, हुकूक और लिबास पूरे करें कोई मना नहीं है, लेकिन अल्लाह को ना भूलें, क्योंकि अल्लाह ना करे हम पर कोई मरना तो बड़ी बात है, दुनिया में कोई बला आती है मुसीबत आती है, अल्लाह ना करे कोई फालिज गिर जाता है बिस्तर पे आदमी पड़ता है तो वही बीवी वही बच्चे वही माँ बाप तंग आ जाते हैं। तेरी इमाम साहब के साथ हमने अपनी आंखों से देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तेरी इमाम साहब से आगे कहते हैं अब्बा बहुत अरसे से बीमार पड़े ना, अल्लाह आगे खिदमत कर करके दुआ करें अल्लाह आसानी कर दे, क्या मतलब जल्दी दम निकले, जल्दी मरे बुढ़ा, जल्दी मरे बुढ़ा, जान अटक गई, हम सारी फैमिली परेशान है। भाई ये तो वो बंदा था यार जो तुम्हारे लिए नाइट ड्यूटियाँ करता था, सुबह से लेकर रात तक गले की तरह पैसा कमाता था, वो बाप है यार, तुम्हें 4 दिन खिदमत करनी पड़ गई तो बोझ उठाए नहीं जा रहा। किसी ने कहा था ना एक बाप तो 10 बच्चों को पाल लेता है लेकिन 10 औलाद एक माँ बाप को नहीं पाल पाती, एक माँ बाप 10 बच्चों को आराम से पाल लेंगे लेकिन 10 औलादे एक माँ या एक बाप को नहीं पाल सकते। तो सोचने वाली बात है कि हमारी किस कदर दिल में सख्ती आ चुकी है, दुनिया से इस हकीकत को समझें। तो इस बयान का मकसद ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दे, ऐश करना छोड़ दे, भाई खूब ऐश करें, खाए पिए, पढ़े लिखे। हजरत अल्लाह फरमाते थे आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो, आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो, डॉक्टर बनो अल्लाह वाले डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो अल्लाह वाले इंजीनियर बनो, कौन कहता है तुमसे दुनिया छोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन खुदा को मत छोड़ो, उस रब के एहसानात को हम ना भूलें जो हमें खिला रहा है पिला रहा है ऐश करा, और आइंदा भी उसी से वास्ता पढ़ना है, आइंदा भी पूरी ज़िंदगी जब तक है और मरने के बाद खबर के अंदर जब उतर जाएंगे उस वक्त भी अल्लाह का ही साथ हमें दरकार होगा। दुनिया की हकीकत को समझें, ये दुनिया वाले भी हमारे साथ उस वक्त तक है जब तक हम अपने पैरों पर चल फिर रहे, 2 पैसे हमारी जेब में, हम सबकी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं, दुनिया हमारे साथ है, सब फ्लूट करेंगे, अल्लाह ना करे वाला पैसे ख़त्म हो जाए, फ़कीर हो जाए, अल्लाह ना करें, जब पहुंच जाए किसी के पास यार मैं मेरा परेशान हो गया हूँ मुझे 2 लाख रुपये दे देना, तो बड़े से बड़ा प्यारा करीब का भी रिश्ता होगा तो वो गए वो फिर टाल मटोल शुरू कर देगा, फिर आइंदा कहेगा यार इससे मिलना ही नहीं हटो बचो, पता है ना सारी मोहब्बतों का जो वो पुलिंदा था बाहर आ गया पैसे मांगने में, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ गई बिस्तर में पड़ गया फिर पता चलेगी दुनिया की हकीकत, फिर देखा जाएगा कौन किसका आशिक था कौन उससे मोहब्बत करने वाला था, उस वक्त दर्द से सिर्फ एक ही हस्ती को पुकारता है बंदा वो कौन, अल्लाह अल्लाह मदद फरमा दे। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे आई सी यू का कभी देखा है जिसके नलकियाँ लगी होती है मशीनें चारों तरफ से लगी होती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगे होते हैं और डॉक्टर मना कर देते हैं अंदर नहीं जा सकते बस इस खिड़की जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से सर झांक लीजिए, तो हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते थे बस तभी ऐसे मरीज को देख के कुछ इस चीज़ का तसव्वुर कर लिया करो कि इस बेचारे का ताल्लुक सिर्फ मशीनों से रह गया और दुनिया से इसका रब्ता कट चुका है और वेंटिलेटर पर भी आ चुका है, ये वेंट के ऊपर इसको लटा दिया गया है, उसकी दिल की धड़कनों से सिर्फ एक ही बात निकलती है वो होती है अल्लाह, कि अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे, अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे। ये वो वक्त होता है तकलीफ का अजियत का, कोई मोहब्बत करने वाला कोई चाहने वाला दुनिया का पूरी दुनिया भी अगर मिलकर हमें मोहब्बत करे पूरी दुनिया भी अगर हमें फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो नहीं पहुँचा सकती, सिर्फ एक रब्बुल आलमीन की ज़ात होती है जो हमें मुसीबत व तकलीफ से बचाएंगी। तो भाई फिर अल्लाह से कैसा ताल्लुक़ रखना चाहिए, एक सांस के बाद जो दूसरी सांस आती है वो अल्लाह के फजल से आती है, तो भाई जब हम अल्लाह के इतने मोहताज हैं इतने फ़कीर हैं तो ताल्लुक भी तो हमें वैसा रखना चाहिए अल्लाह का, अल्लाह का, लेकिन अल्लाह से बिल्कुल 5-10% का ताल्लुक होता है हमारा, 90% जो हमारा ताल्लुक होता है वो नफ्स और शैतान के साथ चल रहा होता है। तो भाई दुनिया तो पर लगा के उड़ रही है, गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है तेजी के साथ, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो तेजी के साथ दौड़ रहा है, अचानक युवराज इस्लाम आ जाएंगे किसी वक्त भी। अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुमतुमुल मुखाबिर, पढ़ते रहते हैं ना सूरह तकासुर, हम पढ़ते रहते हैं कुरान, कभी इसको तर्जुमे पे गौर किया, एक आयत ही हिला दे अंधा कर दिया, अल्लाह हमारे अंधा कर दिया, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दौलत और माल कमाने की हविस ने अंधा कर दिया तुमको, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख डाली। क्या मतलब तुम इतने अंधे हो गए माल कमाने में दुनिया परस्ती में कि तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, मौत की तैयारी नहीं करी तुमने, क्या फ़राइज थे, क्या वाजिबात थे, हुकूक अल्लाह कितने थे जो अभी पूरे करने थे, हुकूक अल्लाह कौन से थे जो पूरे करने थे, तुम्हें इस तरह फिक्र ही नहीं थी, तुम तो थोड़े से दिन पे राज़ी हुए हुए थे लेकिन थोड़ी सी दुनिया पे तुम राज़ी नहीं होते थे, तो यहाँ तक कि तुमने कवर नहीं डाली, यानी अचानक फिर मौत का वक्त आ गया। इसी जिसके इसी चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भरती है, इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भरेगी, वरना इंसान की हविस का कोई इलाज नहीं। अगर किसी के पास सोने की एक वादी हो तो इंसान हसरत करेगा, काश एक और होती, काश करके कहेगा काश एक और होती, अगर खजूरों के दो बाह होंगे तो कहेगा काश एक बाह और होता, यानी बस नहीं करेगा वो। आज हमारा हाल देखें, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो करोड़पति लेकिन नफसियाती, अपने आप को देखे, आपको हालात बता रहा हूँ। एक शख्स आया, एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, डॉक्टर साहब के पास, मतलब एक पेशेंट आया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरी कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस होता है, सर की रगें पड़ती हैं। पूछा क्यों, क्या आप इसकी वजह समझते हैं? उसने कहा बात यह है कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, तो मेरी दुकान है यानी सदर में, इसने बताया सदर में 8-10 दुकान, और अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, यानी वो करोड़पति या अरबपति से कम नहीं होगा वो शख्स जो लग भी रहा था देखने। उसने कहा लेकिन मुझे तकलीफ इस बात पर होती है जब मैं अपनी दुकान पर बैठा होता हूँ तो सामने वाले को जो दुकान है उसके पास वही आइटम है जो मेरी दुकान पर है, तो लेकिन उसकी दुकान पर सामने वाले की ज़्यादा रश होता है जबकि क्वालिटी उसकी मेरी बराबर है और पैसे भी वही हैं, तो मैं ये गुस्से से मैं हर वक्त ये देखता रहता हूँ, हसद मुझे होता है कि इसके पास कस्टमर क्यों जा रहे हैं ज़्यादा, मेरे पास क्यों नहीं आते, जब दोनों आइटम मिलकर कीमती नहीं होते। तो इस चीज़ ने उसको डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया, जबकि वो क्या बता रहा है 8-10 दुकानें हैं और पता नहीं कितने उसके प्लॉट, कितने करोड़पति खरा अरबपति आदमी होगा वो, लेकिन बेचारा नफसियाती हो गया। वजह क्या है, हविस, दुनिया की हविस पूरी नहीं हो रही, दुनिया की हविस पूरी नहीं हो रही उसकी, यहाँ तक कि बेचारा वो नफसियाती पागल होने लगा। तो इसलिए अगर दुनिया को लगाम ना दी जाए तो ये आदमी को बर्बाद करके हलाक कर देती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मालदार होना मुत्तकी आदमी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। वरा और कीजिए इस हदीस पर, क्या फरमा रहा है कि पैसे वाला होना मुत्तकी आदमी के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्यों, मुत्तकी आदमी के पास माल आएगा वो क्या करेगा, मस्जिदें बनवाएगा, मदरसे बनवाएगा, फल के खुदा का काम में सदकात खैरात करेगा, तो सारा जो पैसा इसका खर्च करना वो पैसा जन्नत के उसूल का जरिया बनेगा। लेकिन इस हदीस शरीफ को उल्टा कर लें, फासिक फाजिर का पैसे मालदार होना फिक्र और परेशानी की बात है। दलील सुनिए, वो करोड़पति अरबपति वो आम फासिक फाजिर हो, अब उसकी बहन या बेटी की भाई की औलाद की शादी हो, देखो भरे वो क्या करता है, बेपर्दगी का माहौल, मूवी तस्वीर, और वो करोड़ों रुपए लोग खर्च कर देते, बल्कि अरबों रुपए लोग खर्च कर देते हैं शादी ब्याह में, नमूदों नुमाइश में, गुनाहों की चीज़ों के अंदर, क्योंकि फासिक फाजिर है, पैसा आ गया, अब वो हराम कामों में गुलछर्रे उड़ाएगा वो। तो बस ये चीज़ होती है, तो पैसा बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा है। तो भाई इस वक्त जो ये बस कहने का ये है खुलासा कि हम लोग अपने आप को ख़ुद पहले तखने के ऊपर लेकर आए, और अब इसके बाद फिर जब हमारे अंदर तखवा आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसके असरात हमारे अहलोयाल पे भी पड़ेंगे, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा, हमसे मुतालिक हमारे माँ बाप के बारे में अब नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुमने अपने माँ बाप को हिदायत की नहीं कोशिश क्यों नहीं करी, तुमने चचा मामू की नहीं कोशिश क्यों नहीं की, ताए की नहीं कोशिश क्यों नहीं की, बहनों की नहीं कोशिश क्यों नहीं की, वो सब बाद में वो फ़र्ज नफली चीज़ें, लेकिन बीवी और बच्चों से मुतालिक सवाल होगा अपनी जान के बाद कि बताओ तुमने अपने बीवी बच्चों को क्या माहौल दिया था। और जो लोग एक गुनाहों के ऊपर, जब ये भी हदीस शरीफ में मज़मून आ चुका है कि जब जहन्नम में लोग जाएंगे और उनके साथ उनकी फैमिली भी जब जाएगी, तो वही बीवी बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे खड़े होकर उस शख्स का गरेबान पकड़ेंगे, अपने बाप का, बीवी उसका शौहर का गरेबान पकड़ेगी, नाराज़ होगी, अल्लाह से कही अल्लाह पाक मजबूर थे, हम इसकी ज़ेर कफालत थे, हमने इसको नहीं कहा था ये हमें गंदा मोहन देता, हमने इसको नहीं कहा था कि हराम मोहन मुझे देना, औलादे कहेंगे अल्लाह हम बड़ी जिम्मे, इसने हमें जो मोहल दिया हम उसी पर चलने पर मजबूर थे, पाबंद थे, अल्लाह हमें जन्नत रसीद मत कर, इसको खरक कर, इसको मार। आज हम मर रहे हैं ना, हम हलाल हराम की तमीज खो दी मोहब्बतों में हमने भाई, कल को यही बीवी बच्चे जो है लानत देंगे हमारी शक्लों पे और कहेंगे अल्लाह पाक हमें बचा ले, हमारा कुफूर नहीं था, हम तो उसके महकूम थे, हमने थोड़ी कहा था, इसने हमको जैसा चलाया हम चले। ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले कह के जा चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों पे किसी चीज का असर नहीं हो रहा। इतनी सी मामूली सी बात, हम पेप्सी मिरिंडा 3 छोड़ने पे तैयार नहीं है, कसरत के साथ दुकानें भरी हुई हैं, कसरत के साथ अभी भी लोग ले रहे हैं सारी चीज़ें। अभी उन्होंने 7-Up को स्ट्रॉबेरी शेक को फेवर निकाल दिया, बड़े बड़े बिलबोर्ड उन्होंने लगा दिए, पागलों की तरह मुसलमान पी रहे हैं, वो नया फ्लेवर आया स्ट्रॉबेरी शेक का। अरे फकीर हो, कभी कुछ खाए पिए नहीं है क्या, इतने बेगैरत हो गए हो, ये उनका खून पी रहे हो, ये फलस्तीनियों का। उन्होंने भी पेप्सी वालों ने जश्न मनाया, पत्नी कितने बिलियन का उन्होंने चेक दिया भी वहाँ यहूदी गवर्नमेंट को, पेप्सी कंपनी ने, कि ये सारा जो हमने पैसा आपको कमा के दिया है और इससे जो आपने असला खरीदा फलस्तीनियों को मारा है, उस खुशी में पेप्सी वालों ने पूरा भी जश्न मनाया। तो लेकिन मुसलमान छोड़ने पर तैयार नहीं है, वो रिटेलर वो दुकान वाले जो ये किसी तरह ये रखने पर छोड़ने पर तैयार नहीं है, अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि ये इसको भी लोग गुनाह समझ रहे हैं, गुनाह नहीं है, कुफूर है, कुफूर ये समझने मसला। दलील सुन लीजिए, एक होता है गुनाह, एक होता है कुफूर। कुफूर क्या है कि हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम फंड दे रहे हैं किसको, यहूदियों को, कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, इसका जो पैसा है मेरे मुसलमान भाइयों का मारे, किसी को मत छोड़ो, माँ बहनों की इज्जत ही लूटाओ, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। तो हम पैसा दे रहे हैं अपने मुसलमान भाई बहनों को मरवाने का, किसको, यहूदियों को, तो ईमान बचेगा। आप सल्लम की गदी से पागे, कभी अपने दिल से भी फतवा ले लिया करो, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल वाजे हो, छोटी छोटी हों, उसके लिए भी मुफ्तियों के पास भागते हो, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई। दुनिया के मामले में तो बहुत शार्प हो, बहुत जीरो को, बहुत स्मार्ट हो, दीन की बातें समझ में नहीं आती। तो भाई ये बड़ा रोने का मुकाम है, वहाँ परखचे उड़ रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, कैसी ऐसी बुरी हालतें हो रही हैं कि वहाँ बगैर बेहोश किए उनको पकड़ के बांध के फिर उनकी आँखें निकाली जा रही हैं, फिर उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं बगैर बेहोश किए हुए, और सड़कों पर फेंक रहे हैं, और अजीब अजीब उनके टुकड़े टुकड़े करके पीसेस करके कर रहे हैं, उनको खुराक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उन पूरे पूरे जो ट्रक है कंटेनर हैं वो फाड़ रहे हैं, जो अनाज की जो बोरी है वो ब्लेड से कटर से उसको काट रहे हैं, और बाकायदा वो कह रहे हैं हमारी फिल्में बनाओ ताकि उम्मत मुस्लिम देखे कि हम उनसे कितनी नफरत करते हैं, और हम कोई खाने पीने की चीज़ दिल तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन मुसलमानों की बेगैरती हम लोगों की उम्मत मुस्लिम की ख़त्म नहीं हो रही, अभी तक कसरत के साथ बता रहा हूँ, कसरत के साथ इनकी मसनूआत इनकी प्रोडक्ट मुसलमान दबा के ले रहा है, अभी तक बहुत कम लोग हैं जो प्रोडक्ट सबको छोड़ी हैं। तो भाई क्या होगा, फिर अल्लाह का अजाब आएगा, ये नहीं सोचे आदमी तो फलस्तीन में हो रहा है, वो तो कश्मीर में हो रहा है, ये वन बाय वन सब जगह सारे इस्लामी मुल्कों का इस पर अल्लाह का अजाब इस वक्त सर पर खड़ा हुआ है। इस वक्त हम लोग हालत जिहाद में चल रहे हैं, कुछ नहीं पता कब किस वक्त क्या हो जाए, लेकिन हमारी मस्तियाँ दुनिया परस्ती ख़त्म नहीं हो रही, अल्लाह वाले चीख चीख के मर गए, दुनिया से चले गए बेचारे, इस वक्त भी जो बचे बुझे वो भी बोल रहे हैं कि होश के नाखून पकड़ो, पानी सर से ऊपर आ चुका है, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर इंतहाई करीब है, उसके बाद जो है काला दज्जाल आएगा, बहुत करीबी सारे मामलात हैं, अपने आप को दुरुस्त करें, हम लोग आगे वाले हालात से लड़ने के लिए निमटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जिस्मानी तौर पर, मैंटली तौर पर, आसाबी तौर पर, और उसकी अवेयरनेस वो इल्म हासिल करें, ख़ुद भी हासिल करें, और अपने बीवी बच्चों को भी सारे उलूम सिखाएं कि क्या क्या अब तक हो चुका है और क्या होने वाला है, और अगर कल को मैं नहीं रहा तो बीवी बच्चों को सारी मालूमात दे के जाएगी नालात में तुम्हें क्या क्या करना है। अल्लाह न करे अगर हम लोगों ने उनको डार्क में रखा अपनी औलादों को, तो इनके ब्रेन हैमरेज जाएंगे, मुशायख फरमा रहे हैं इनके दिमाग की रगें पड़ जाएंगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आगे जो वक्त आने वाले। हम तो पुराने लोग तो बहुत अच्छे वक्त पर आए और दुनिया से चले गए, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको बहुत टफ हालात देखने आगे, इसलिए उनको प्रिपेयर करें आगे के हालात के हवाले से, नहीं तो अगर उनको अवेयरनेस नहीं दी नहीं उनको दिया, तो अगर अचानक उन पर कोई बला कोई मुसीबत नाजिल हो गई अल्लाह ना करे दज्जाल वाली, तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनको तो इल्म ही नहीं होगा, तो फिर काफिर हो जाएंगे, फिर वो काफिर होंगे, जहन्नमी होंगे, और बहुत बुरा उनका खात्मा होगा। तो जई उलमा कराम ने किताबों में लिखा, हवालों के साथ चार चार छः छः दिन हो जाएंगे बेहोश पड़े हुए लोग, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अब रो निकली, अब रो निकली, अचानक गली से आवाज़ लगेगी, दज्जाल आएगा, वो कहेगा रोटी ले लो, पानी ले लो, फिर एक हिम्मत जमा करेगा आदमी, मरता आदमी उठेगा और कहेगा भाई मैं मर रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे मर रहे हैं, कुछ पानी दे दो, कुछ खाना दे दो, वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है सब दे लो, लेकिन मुझे खुदा मान। तो फिर कसरत के साथ जो ईमान वाले लोग हैं वो उसको खुदा मान लेंगे दज्जाल को, और फिर वो रोटी पानी देगा, इस तरह जाने बचेंगी, लेकिन ईमान से वो लोग फारिग हो जाएंगे, उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, उसका खाना पानी कहीं नहीं होगा, तो सहाबा कराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, फिर जो अल्लाह वाले मुत्तकी होंगे वो तो खुदा नहीं मानेंगे, वो बेचारे क्या खाएंगे पियेंगे। फरमाया उस वक्त उनकी अल्लाह का जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये अल्लाह अल्लाह, ये सारे जिक्र अस्कार, ये सब खाने पानी का निमुल बदल बन जाएगा। ये अल्लाह का जिक्र करेंगे और ख़त्म, मुत्तकी लोग की सिफात। उस वक्त भी तकवा काम आएगा, भीख नहीं मांगेंगे मुत्तकी लोग दज्जाल के आगे कि भाई रोटी दे दे पानी दे दे, उनको ज़रूरत ही नहीं, कहेंगे लानत भेजते हैं हम तेरी शक्ल पर। उनकी अना को अल्लाह पाक ऐसे रखेंगे जिस तरह दुनिया में रखते हैं, वो भीख नहीं मांगेंगे, सिर्फ जिक्रुल्लाह करेंगे और वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा खाने पानी का, ख़त्म पानी। फिर उसके बाद सहाबा किराम ने पूछा रसूल, तो दज्जाल के फितने से बचेंगे कौन लोग? फरमाए सिर्फ मुत्तकी। बाज़ लोग कहते हैं ना, शायद हमें तकवे पर बयान करने का शौक़ है, भाई हमें शौक़ नहीं है, पूरा शरीयत का हासिल ही तकवा है, नेक अमाल के साथ जो लोग गुनाहों को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर मदद के वादे अल्लाह के, फिर दज्जाल किस नहीं बिगाड़ पाएगा ऐसे लोगों का, मुत्तकी लोगों का। तो आगे के हालात जो हैं उसको समझने की कोशिश करें और तैयारी करें, और दिल और दिमाग अपने मजबूत रखें, अपने भी और अपने औलादों की भी, उनको ईमान से भरपूर ज़िंदगी और माहौल अता फरमाएं। जो वक्त पिछला गुजर गया गुजर गया, लेकिन अब इस तरह से गफलत का वक्त अब बेहतर नहीं है, उसको हम लोग इस तरह से गुजारें, ठीक है भाई। तो अपने घर का और ये भाई सारी चीज़ें आखिर में एक बात बता दूँ, ये तकवा मिलेगा कहाँ से? अगर समझाते थे वो डॉक्टर सही नहीं है जो मर्ज की तशखीस तो कर दे लेकिन दवाइयाँ ना दे, इलाज ना दे, बता दे आपको बीमारी, भाई दवाइयाँ नहीं दो इलाज भी तो करो, तो इलाज क्या है? कूनू माफ़ादिकीन, पुराने पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तकवा तुम्हें चाहिए, दीन पर दोस्तगी चाहते हो, तो पोत इरादी से तुम्हें तकवा नसीब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह वालों की सोबत में जाओ, वहाँ तुम्हें तकवा नसीब हो जाएगा, थोड़े अरसे में इंशाल्लाह दीन पर इस्तेक़ामत तुम्हें हासिल हो जाएगी। तो जहाँ जिस अल्लाह वाले से जिसको मुराफ़त हो वहाँ ताल्लुक़ क़ायम कर ले, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में तकवा नसीब हो जाएगा। आखिर में हज़रत वाले अहमद इरशाद फरमाते थे कि ये पाँच अमाल बयान कर दिए करो, जो भी ये मुख्तफर से पांच अमाल है, जो भी ये पांच अमाल कर लेगा इंशाल्लाह मरेगा नहीं उस हफ्तम से जब तक अल्लाह पाक उसको अपना वली बना के दुनिया से नहीं उठाएंगे। तो और ये पांचों अमाल का ताल्लुक जो है फ़राइज़ और वाजिबात से, नफली कोई इसमें नहीं है मामला, फ़र्ज़ और वाजिब है, समझ लीजिए। दो अरब के करीब मुसलमान हैं लेकिन बहुत कम मुसलमान हैं जो ये पांचों अमाल कर रहे हैं। तो पहले तो कुरान पाक तजवीद से पढ़ने का एहतमाम करें, बग़ैर तजवीद के पढ़ना गुनाह कबीरा है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, हा की आवाज़ हमने हलक से निकाली, हम तारीफ़, अगर हा की आवाज़ दो चश्मी ये से निकाल दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसका मतलब हो जाएगा नऊज़ बिल्लाह तमाम है और बुराइयाँ अल्लाह की। तो कहाँ तारीफ़ है और कहाँ बुराइयाँ। तो इसी तरह कल माने दिन, दो नुक्ते वाला खौफ, हलक से आवाज़ निकाली, खड़े काफ से पढ़ा कल, कल माने कुत्ता, तो कहाँ दिल कहाँ कुत्ता, तो काम मतलब पूरे के पूरे बदल जाते हैं। तो डेढ़ दो महीने की मेहनत है, किसी भी कारी साहब से शर्म ना करें, नूरानी फ़ायदे से पढ़ें, तजवीद दुरुस्त हो जाएगी। और दूसरा मल है एक उठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, ठोरी के नीचे से दाएं से बाएं से, चारों इमामों का जमा है, किसी का अख्तलाफ़ नहीं है कि एक मुठ्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है। और चावल के दाने के बराबर भी अगर एक मुठ्ठी से दाढ़ी कम की तो ऐसी दाढ़ी का रखना और मुड़ाना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। मूछे बिल्कुल बारीक रखें, बड़ी मूछ पर आपसे समय इरशाद फरमाया मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, मेरे औज़े कौसर भी करीब ना है। नंबर दो, मुनकर नकीर कबर में गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन, कबर में उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। तो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को देख के नफरत से मुँह फेरा और हलाकत की बद्दुआ दी है जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और जो लोग दाढ़ियों को मुड़ाते थे। सोचिए आप हलाकत की बद्दुआ दे रहे हैं, तो कहते हैं ना ज़ाहिर से क्या होता है दिन सही होना चाहिए, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है। और तीसरा जो अमल है मा असला मिनल काबैनी मिनल ज़ारिफ़ इन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों को दो सूरतों में टखने फोल के रखना वाजिब है। दो सूरतें कौन सी है? जब हम खड़े हो चल रहे हों टखने फोल के रखना वाजिब है, बैठे रहते हो तो भले छुप जाए। नमाज में तो आप उसने अलग से फरमाया उस शख्स की तो नमाज ही कबूल नहीं होती जो दौरान नमाज अपने टखनों को छुपा के रखता है। और एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस बंदे से मौत तक मोहब्बत नहीं करते जो अपने टखनों को छुपा के रखता है। मर जाएगा, सारी ज़िंदगी अल्लाह उस बंदे से कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। तो टखने खोल के रखें, शर्म ना करें, सही है ना। और ये वाजिब अमल है, जहन्नम में जलने की वही है, बताइए आप जिस समझ से जहन्नम में जला जा रहा हो तो वो कोई छोटी चीज़ है, पैंट पहनी हुई अगर आदमी ने तो उसको फोल्ड कर लो भाई, पाँच टखने वाजे खुले होने चाहिए। तीन अमल होगा, चौथा अमल है फुल मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाजत करें اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور مومن عورتوں سے بھی آپ کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ پاک مرد و عورتوں کو دونوں کو حکم دے رہے ہیں نظروں کی حفاظت کو اور شرمگاہ کی حفاظت کو, کیوں جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. زنا کی پہلی سیڑھی ہے بد نظری, پہلے انسان دیکھتا ہے, پھر دماغ خراب ہوتا ہے, پھر دل گندہ ہوتا ہے, پھر اس کے ذرائع اختیار کرتا ہے, پھر یہاں تک کہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے. اسی اللہ پاک ہمیں زنا سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں, نہ دیکھو نہ تم زنا تک پہنچو گے, تو نہ دیکھو نہ برباد ہو, وہ شاخی کاٹ دو جس کو الو بیٹھے, دیکھنے سے تو فساد شروع ہوتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, دو ٹوک الفاظ میں آپ فرما رہے ہیں کہ یا تو تم لوگ اب نظروں کی حفاظت کرو گے, نہیں تو تم لوگ کی صورتوں کو مس کر دیا جائے گا مس. اور ایک حدیث شریف میں ناظرہ منظور رہی, اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے. کس کی بد دعا؟ امام الانبیاء کی بد دعا. کس گناہ پر؟ بد نظری کے اوپر, چاہے وہ موبائل پر ہو, چلتے پھرتے ہو, نامحرم لڑکی عورتوں کا, جس کے ساتھ بھی ہو, بد نظری کے اوپر رسول اللہ لعنت کی بد دعا دے رہے ہیں. اللہ بد نظری کرنے والے پر لعنت فرما اور اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. یہ وہ خواتین آتی ہیں ہماری مائیں بہنیں جو بیچاری ہر ایک کے سامنے بے پردہ آ جاتی ہیں نامحرم کے, رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا آئے گی, دل میں گھبراہٹ بے چینی ہمیشہ ملے گی. چاہے کتنا ہی پیسہ آ جائے, چاہے 10 اے سی کے اندر ٹھنڈک میں آدمی بیٹھ جائے, کتنے ہی مزے اس کو نعمتیں مل جائیں, لیکن قلب کے اندر ایک آگ لگی ہوئی محسوس کرے گا اپنے. اگر تم انسان دیتے تھے, منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا, منہ میں کباب ہوگا دل میں عذاب ہوگا, چین نہیں ملے گا. اے سی کھال تو ٹھڈی کر دے گا لیکن قلب کی آپ کو نہیں بجھا پائے گا. اے سی وہ خود کہو گے کہ اے سی کی ایسی کی تیسی. فرمایا کیوں؟ خالق سکون نہ راضے تم سے, جس نے سکون پیدا کیا اس کو راضی کرو, حرام کام چھوڑو. یہ تو مانتی ہے اسباب سارے. تو نظروں کی حفاظت کریں. اور پانچ جو مل یا حلم و خائنات العیون و ما تخفی صدور, یہاں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یا علم خائنات, میں خوب جانتا ہوں, میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو, آنکھوں کی چوریوں کو, تم بد نظری کر دو. وما تخفی صدور, ایک تو تم بد نظری کر دو, اس کے بعد سینوں میں گندے خیالات پکاتے ہو. میں سب واقف ہوں, یا اللہ نے کوئی سزا کی بات نہیں کر رہے, اللہ بتا رہے ہیں دیکھو میں سب دیکھ رہا ہوں. جیسے باپ کہتے ہیں نا اپنے بچے سے, بیٹا میں یہ بات سمجھو کر تمہیں مار نہیں رہا پیٹ نہیں رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مجھے کچھ خبر نہیں, مجھے سب پتہ ہے تمہاری حرکتوں کا. مطلب یہ کہ میں سمجھا رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں, آگے میں تمہاری پٹائی لاؤں گا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں سب دیکھ رہا ہوں جو تم حرکتیں کرتے ہو, یا علم جانتا ہوں ہائے نتی آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور, بد نظری کرتے ہو پھر دل میں گندے خیالات پکاتے ہو. تو دل میں گندے خیالات آنا برا نہیں ہے, جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ آدمی اس سے مجبور ہوتا ہے. بس جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آدمی کسی جائز کام میں لگ جائے, وضو کر لے, کتاب پڑھ لے, یا اٹھ کے باہر چلا جائے تو اس کیفیت سے نکل جائے گا. لیکن جان بوجھے گندے خیالات لانا جمانا یہ صحیح نہیں ہے. دل کو بالکل پاک صاف رکھیں, اللہ کی نہیں, کیونکہ یہ ہمارا قلب نہیں ہے, بیت اللہ ہے. جب ان چاروں اعمال سے جب نور پیدا ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ ماضی میں جو گناہ ہوئے تھے اس کی پکچرائزیشن دل کے اندر کرتا ہے وہ, تاکہ اس کی جو ساری محنت ہے چار اعمال کی وہ برباد ہو جائے اور یہ فیل ہو جائے. تو یہ پانچواں بہت خطرناک ہے یہ اسٹیپ, جس کو لوگ چھوٹا سا عمل سمجھ رہے ہیں, گندے پھیلاتی تو ہیں, یہ خطرناک ہے, اس سے چاروں اعمال کا نور برباد ہو جائے گا. یہ پانچواں اسٹیج میں بہت سنبھل کے رہنا, جس کے چار اسٹیپ پورے ہو جائیں تو اس کو دن کو بالکل پکڑ کے رکھیں, گندے خیالات خود سے لے کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے قرب کے انوارات اور تجلیات اس کو نصیب ہوں گی, اور جب یہ کلام سنا گیا تھا مقام او تک اللہ پاک اس کو پہنچا دیں. اس طرح ایسے لوگ موجود ہیں جو الحمدللہ مقام او تک پہنچے ہیں. تو وہی بات, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, وہاں تک پہنچنے کی قیمت, تکنے کی قیمت, فون ہے ارمین, گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی, دل کو توڑنا پڑے گا, اس کے بعد اللہ کا قرب پیار ملے گا, پھر اللہ پاک مزے کریں. ٹھیک ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یا رب کریم یا رحم الرحیم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ کہنا جو کہنے سے میں نے وہ غلطی کرنی بیچی, غلطی ہوئی تو شان رحمت سے بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تھی یہ خوشی کی نہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما, یا اللہ ہم سے کسی ایک کو محروم نہ فرما, یا اللہ ہم سب کو رمار ہمارے تمام اہل و عیال کو کامل ہدایت نصیب فرما, جس فرما, تقوی نصیب فرما. یا اللہ لا دینی سے بے دینی سے ہم سب کو نجات دے دے. یا اللہ اپنی خشیت محبت اور للہیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کے اوپر جو زنگ اور سیاہی آ چکی ہے, یا اللہ اس کے فن کھول دے, لیائی اور سنگ کو سیاہی اور زنگ کو صاف کر دے. یا اللہ یا رحم الرحیمین, حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ تو جاننے والا ہے, یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, جو بھی ہیں محروم نہ جائے. یا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ تو جاننے والا ہے, سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ چھوڑو, سب سے بڑھ کے ہم تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. اللہ جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا, या रहमान रहीमीन, या अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन सबको शिफा कुली नसीब फरमा, जितने भी मुसीबत ज़दे हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, या अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह जितने भी मुफलिस नादार गरीब हैं उनको लाल से गनी फरमा, या अल्लाह जो बच्चियाँ अपने घरों में बैठी हैं उनको जल्द से जल्द बेहतरीन उनके रिश्ते अता फरमा, या रहमान रहीमीन, या अल्लाह बिलखुसूस जो फ़लस्तीनों में फ़लस्तीन में जो ज़ुल्म हो रहा है, अल्लाह या रहमान रहीमीन पाक परवरदिगार यहूदियों को और उनके उसके जो हवारी है उसके जो दोस्त हैं जो मिल के सब तबाह कर रहे हैं फ़लस्तीनी को, अल्लाह इन खबीस यहूदियों को और इसके साथियों को जम 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 इनको तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे, अल्लाह इनको इबरत का निशान बना दे, या अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमा, अम्मास की मदद फरमा, या अल्लाह फरिश्तों की जमात दे दे, या अल्लाह हम तो मुफन्नस और हिजड़े हो चुके उम्मत मुस्लिमों के अक्सर लोग हम लोग मुफन्नस और हिजड़े हो चुके हैं, अल्लाह हम इस बात का इकरार कर दें, हम सब दूर से बैठ कर टस्से बहाते हैं और बददुआएं देते हैं, जिस तरह को हिजड़ों को कोई दो खफड़ा मार दो तो हिजड़ा कोई क्या करता है, वो हाय हाय करके ताली बजा के बददुआएं देता है बैठ के, या अल्लाह मुझ समीर हम सब पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिम तकरीबन हिजड़े हो चुके हैं जो सिर्फ बददुआओं के ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ बददुआएं देते रहते हैं, अल्लाह पाक हमारी बददुआओं को भी अगर फबूल कर ले तो अल्लाह पाक फिर भी काम बन जाएगा, अल्लाह हमारी जो बददुआएं इन खबीसों के हक़ में यहूदियों के हक़ में अल्लाह फबूल फरमा ले और अल्लाह इनको जल्द से जल्द जल्द तबाह बर्बाद कर दे, सफ़े हस्ती से मिटा दे, और अल्लाह और ऐसे बेगैरत बेइज्ज़त हम मुसलमानों में जो लोग हैं जो इनकी मसनूआत का अभी तक बायकॉट नहीं कर रहे और इनके मशरूबात और सारी चीज़ों का वो रिटाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको ईमानी गैरत और शर्म अता फरमा, इनके दिलों में अपना फॉर्म डाल दे, या अल्लाह इनको खात्मा इन पर कुफ्र के होने से बचा ले, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा, या रहमान रहीमीन, या अल्लाह अपने अज़ाब से पहले पहले, या अल्लाह मेरे वालिद साहब की और हमारे प्यारे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमीन की, कुल मोमिनीन मोमिनात की, कुल जिन्नात की, सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, सबको जो रंग सरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा, अल्लाह सब की खबरों पर नूर से भर दे, ये खातून हैं वो कैंसर के मर्ज़ हैं मुबतला हैं और काफ़ी टिकल गैस इन पर उसे दुआ करें, अल्लाह पाक भी मदद फरमाए उनको कैंसर के मर्ज से जादू बदसरात से निजात देकर मुकम्मल शिफा कुल नसीब फरमा, तंदरुस्ती आफ़ लंबी उम्र अता फरमा, अल्लाह जो भी जादूगर हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर हिदायत मुकद्दर में नहीं है तो उनको जल्द जल्द हलाक कर दे, तबाह कर दे अल्लाह उन लोगों को, या अल्लाह पुश्तवतीन के रसौलिया हैं दुआ करें अल्लाह इनकी रसौलियों को जल्द जल्द ख़त्म फरमा दे, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله يسلم لك فم ولي ولا ادم سبع مريم سمع الطاقه سيكين فنم اكيد هي دير وجست